आज रात मैंने मुख्तसर सा मतन पढ़ने को चुना है। खुदावंद की मर्जी हुई तो वो हमें इसका स्याको सबाक देगा। मुकद्दस मत्ती 13:24-30 और फिर मैं अभी कुछ ही लम्हात में 36-40 को भी पढ़ना चाहता हूँ। अब मुकद्दस मत्ती 13 मत्ती के 13 से और उसकी 24 आयत से शुरू करते हैं। कलाम के पढ़े जाने को गौर से सुने, मेरा कलाम नाकाम हो जाएगा मगर उसका नहीं। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया और चला गया। बस जब पत्तियां निकली और बाले आईं, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आके घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। क्या आपने गौर किया? पहले कड़वे दाने इकट्ठे कर लो और उनके गट्ठे बांध लो। अब इसे पढ़ते हुए मेरे लिए कुछ नया था। जबकि मैं कैटालिना पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ उस रात दुआ कर रहा था और तब मैं सोच रहा था कि वो कलाम मैं कहाँ से जमा करूँ जिस पर मैं बोल सकूँ जो कि आज रात मैं बयान करना चाहता था। और मैं नीचे गया और मैंने तजाद का लफ्ज पाया, लिहाजा मैंने लुगत ली और लफ्ज तजाद के मानी तलाश किए और इसके मानी है मुख्तलिफ होना या बरक्स होना, जैसा कि वेबस्टर कहता है, मुख्तलिफ होना कुछ फर्क होना, जो कुछ भी पहले से है उसके बरक्स होना। इसलिए मैंने आज रात का मतन सोचा और मैं इसे तजाद का बीज कहूंगा और भरोसा रखता हूं खुदावंद अपने कलाम को बरकत देगा जैसे ही हम इस तक रसाई हासिल करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि उसने इसकी तशरीह 36 और 43 आयत में की है। कैसे ये बीज पका? और जबकि हम इस हवाला पर हैं, तो आएं अब 36-43 आयत को भी पढ़ लें। उस वक्त वह भीड़ को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु खुद इस तमसील की तशरीह कर रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि इस तशरीह का क्या मतलब है। और अब जैसे ही हम इसके बीज बोने और काटने की तरफ बढ़ते हैं, तो अब वो उसकी तशरीह करता है। और तब मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु ये तमसील अपने ही दिनों के बारे में दे रहे थे, मगर इसके मानी दुनिया के इख्तिताम के थे या जमाने के इख्तिताम के, जो कि यही जमाना है। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये मुख्तसर सा मतन आज रात के लिए बड़ा मुनासिब है, क्योंकि हम इन्हीं दिनों में रह रहे हैं। इसलिए यीशु ने यहाँ वाज़े तौर पर कहा, जमा करना इस दुनिया का इख्तिताम है, जब खात्मा होगा गेहूं का जमा किया जाना है और इसी तरह कड़वे दानों का जमा किया जाना है ताकि उनको जलाया जाए, लेकिन गेहूं को बादशाही के लिए जमा किया जाए। और मैं ईमान रखता हूं कि ये इसी तरह है, और एक दूसरा हवाला भी मेरी रहनुमाई करता है कि इसी तरह ईमान रखो। मैंने ये यहाँ लिख रखा है मत्ती 24:24, जहाँ बीज के बारे में कहा गया है, बल्कि तजाद के बीज के बारे में कहा गया है। यीशु ने कहा वो आपस में इतने मिलते जुलते होंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले, तकरीबन बिल्कुल एक जैसे। और एक दूसरी जगह कलाम में ये भी लिखा है, बारिश रास्त और नरास्त दोनों पर होती है। मुझे वो अपना पहला तजर्बा याद है, जब कभी मैं पहली बार पेंटिकोस्टल लोगों में गया था। मैं मिशवाका इंडियाना में था और मैं एक बड़ी कन्वेंशन में था, जैसा कि आज इस हाल में है। वहाँ पर शमाल और जनूब एक साथ जमा थे, क्योंकि उन दिनों तफरीक की वजह से उन्हें वहाँ इकट्ठा जमा होना पड़ता था। वो पेंटिकोस्टल भाइयों के दो अजीम ग्रोह थे, और मैंने इससे पहले उनको कभी नहीं सुना और ना ही इससे पहले उनको मिला था। मैंने पहली मर्तबा गैर जुबानों में बोलना सुना था और कन्वेंशन की आखिरी कतार में मौजूद था, और मैं उनका मेंबर नहीं था। मैं एक जवान बैप्टिस्ट खादम था और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था, और मुझे याद है कि मैंने पहली मर्तबा किसी को गैर जुबान बोलते सुना, हालांकि मैं कुछ नहीं जानता था कि ये सब क्या है। और दो अशखास खसूसन सामने बैठे हुए थे, एक गैर जुबान बोलता था और पहला शख्स जो बोलता था दूसरा उसका तर्जुमा करता था। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने अपनी बाइबल का मुतालिया करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पाया कि ये कलाम के मुताबिक है, ये तो बिल्कुल कलाम था कि रूहुल कुद्स ये करेगा। ठीक है, एक दिन के बाद उस रात मेरे दिल में बड़ी हलचल थी। मैं मकई के खेत में सोया हुआ था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि एक पलंग ले लेता, लिहाजा मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि घर पहुंच जाऊं। और मेरे पास दो दिन पुराने कुछ रोटी के टुकड़े या रोल थे जो कि मेरे नाश्ते के लिए थे, और मैं उनको खाने के लिए खुश था। मेरे पास वहाँ अदा करने के लिए पैसे ना थे। उन दिनों में 1933 में बड़ी परेशानी थी, लिहाजा ये बड़ा मुश्किल वक्त जा रहा था, और इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं उनके साथ खाना खाने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं वो चाहता हूं जो उन्होंने पाया है, क्योंकि जो उन्होंने पाया था वो मेरे पास नहीं था। लिहाजा उस सुबह मैं वहां था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तमाम खादम यहां ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपनी शनाख्त करवाएं कि आप कौन हैं और आप कहां से हैं। ठीक, मैंने सिर्फ इतना कहा, मुबशर विलियम ब्रैनम जेफरसन व्हील, और बैठ गया। ठीक उस वक्त मैं उस प्लेटफॉर्म पर सबसे छोटा खादम था, और दूसरे दिन उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म पर मुनादी करने के लिए बुलाया, और जब मैं बोल चुका तो ये हमारा अजीम वक्त था। और फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू किया जिन्होंने मुझे अपने चर्च में आने की दावत दी। तब इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, अगर सिर्फ मैं उन दो अहम आदमियों से मिल सकूं जो कि गैर जुबान बोल रहे थे और तर्जमा कर रहे थे। ये बात मेरे दिल में हलचल मचा रही थी, मैं इसके लिए बहुत बेचैन था। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक छोटी सी नेमत है जो आपको मिलती है। आप जानते हैं बुलाहट और नेमतें बेतब्दील हैं, और ये आपकी सारी जिंदगी में आपके साथ रहती हैं। देखें, अगर ये खुदा की नेमतें हैं तो आप इसी के साथ पैदा होते हैं, इसलिए मेरे साथ ये हमेशा होता रहा। जो लोग मेरी पूरी जिंदगी को जानते हैं वो जानते हैं कि ये सच है। ठीक है, अगर मैं सोचूं, मैं नहीं जानता था कि ये क्या है जिसे रोया कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि ये क्या था, मगर मैंने सोचा काश मैं उनसे फिर कभी बात कर सकूं। ठीक है, जो रूह मैंने इमारत में महसूस किया था वो वाकई ही खुदा का रूह था, इसलिए मैं उनमें से एक से बात करने जा पहुंचा और कुछ सवालात पूछे, और वो वाकई ही एक हकीकी मसीही था। उसके बारे में कोई शक नहीं था, वो शख्स वाकई एक ईमानदार था। और दूसरा आदमी, जब मैंने उससे बातचीत की, अगर मैं कभी किसी रयाकार से मिला हूँ तो वो उनमें से एक था। वो आदमी दरअसल उसकी बीवी सुनहरी बालों वाली औरत थी, और उससे उसके बच्चे थे, मगर दो बच्चे उसके काले बालों वाली औरत से भी थे। और मैंने सोचा अच्छा ये क्या है, और वहाँ मैं उलझन में पड़ गया। मैं एक बुनियाद प्रस्त हूँ, इसलिए ये जरूर कलाम में से होना चाहिए, वरना ये ठीक नहीं है। और यहाँ वो रूह थी, और जितना मैं हकीकत में जानता था उसके मुताबिक खड़ा था, और दूसरा आदमी बिल्कुल ठीक नहीं था, और जबकि रूह दोनों पर उतरी थी। अब ये कैसे हो सकता है? इससे मैं बड़ी उलझन में पड़ गया था। 2 साल बाद मैं उस गार में दुआ कर रहा था जहां मैं दुआ करने जाता हूं, और एक दोपहर वो गार धुएं से भर गई और मैं बाहर आया और अपनी बाइबल लकड़ी पर रख दी और हवा तेजी से चली और अब्रानियों 6 बाब खोल दिया जहां लिखा है आखिरी दिनों में ये कैसे होगा। अगर हम सच्चाई से गुमराह हो जाएं और अपने आप को नया बनाना चाहें और तोबा करना चाहें तो फिर गुनाह के लिए कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही और किस तरह झाड़ियों और कांटों को रद्द किया जाना है और आखिरकार चलाया जाना है। मगर जिस जमीन पर बार बार बारिश का पानी पड़ता और उसे हमवार करता है मगर फिर भी ऊंट कटारे और कांटे उगते हैं तो ये रद्द किए जाएंगे लेकिन गेहूं को इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा, मैंने सोचा ये तो हवा का एक झोंका था जिसने ये खोल दिया। ठीक है, मैंने दोबारा बाइबल वहाँ रख दी और मैंने सोचा ठीक है अब मैं सिर्फ ये करूँगा और हवा फिर आई और उसको खोल दिया। ये 3 मर्तबा हुआ और मैंने सोचा अच्छा अब ये तो बड़ी अजीब बात है। और तब मैं उठा और मैंने सोचा खुदावन ने क्यों बाइबल को मेरे लिए पढ़ने के लिए खोल दिया है। जब मैंने पढ़ा जहां कांटे और ऊंट कटारे जिनका रद्द किया जाना और आखिरकार जलाया जाना है मैंने सोचा क्यों खुदा ने मेरे लिए ये खोला है। और जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा अब ये हकीकी रोयाएं जो बगैर किसी रुकावट के आती हैं ये सिर्फ खुदा ही है, समझे। और मैंने निगाह की और मैंने देखा कि जमीन मेरे सामने घूम रही थी और मैंने देखा कि ये सारी एक डिस्क की मानिंद हो गई थी। वहाँ एक सफेद लिबास वाला आदमी गेहूं बोता हुआ चला गया और उसके जमीन की गोलाई से चले जाने के बाद एक और आदमी निकल कर आया जो देखने में खौफनाक था। वो स्याह लिबास पहने हुए था और वो कड़वे दाने बो रहा था। ये दोनों इकट्ठे उगे और जब ये उगे तो ये दोनों प्यासे थे क्योंकि बारिश की जरूरत थी और हर एक ऐसे लग रहा था कि अपने छोटे सर को झुकाए हुए दुआ कर रहा है खुदावन बारिश भेज बारिश भेज। और बड़े बादल आ गए और बारिश उन दोनों पर बरसी और जब ये हुआ तो छोटे गेहूं ने कूदना और कहना शुरू किया खुदावन की तारीफ हो खुदावन की तारीफ हो। और इसी तरह उस छोटे जंगली पौधे ने भी कहा खुदावन की तारीफ हो खुदावन की तारीफ हो। और फिर रोया की तशरीह की जाती है बारिश रास्त और नारास्त दोनों पर पड़ती है। इबादत में एक जैसा रू आ सकता है और हर कोई इससे शादमान हो सकता है रियाकार भी और मसीही भी और वो सब भी जो इकट्ठे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है मगर ये क्या है वो अपने फलों से पहचाने जाते हैं, समझे। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे परखा जा सकता है। फिर आप देख सकते हैं कि अब ये जंगली जड़ है जंगली गंदुम और अनाज कभी कभी हकीकी और घरेलू अनाज की शक्ल इख्तियार कर लेता है लिहाजा ये इतने मिलते जुलते होंगे कि बरगजीदों को भी धोखा दे देंगे। मैं सोचता हूँ कि हम ऐसे ही वक्त के दौर में रह रहे हैं जबकि इन बातों की मुनादी और इन पर गुफ्तगु होनी चाहिए। 41वीं आयत पर गौर करें वो दोनों इतने करीब हैं इन आखिरी दिनों में बहुत करीब हैं। जब तक उसने ये नहीं किया और कहा वो किसी कलीसिया पर भरोसा नहीं कर सकता कि वो उनको अलग अलग करें जैसे कि मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या पेंटिकोस्टल इनको अलग अलग करें बल्कि उसने कहा वो इनको अलग करने के लिए अपने फरिश्ते भेजता है। एक फरिश्ता अलग करने के लिए आ रहा है गलत और ठीक के दरमियान में अलगी करने के लिए और ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय खुदावंद के फरिश्ते के क्योंकि वही एक वाहिद है जो बताने जा रहा है कि कौन गलत है और कौन ठीक है। खुदा ने कहा वो आखिरी दिनों में अपने फरिश्तों को भेजेगा पिछले वक्त के फरिश्तों को नहीं बल्कि आखिरी वक्त के फरिश्तों को और वो उनको इकट्ठा करेंगे। हम जानते हैं कि अब फसल का वक्त आ रहा है। अब एक फरिश्ते का मतलब है पयंबर और हम देखते हैं 7 कलीसियाओं के 7 फरिश्ते हैं और अब नहीं बल्कि कलीसिया या द्वार के जरिए। गौर करें उसने किसको बीज बोने वाला कहा और बीज क्या है। एक बीज बोने वाला वो इब्ने खुदा था जो बीज बोता हुआ गया और उसके पीछे उसका एक दुश्मन आया जो के अबलीस था। दुरुस्त बीज बोए जाने के बाद उसने तजाद का बीज बोया। अब दोस्तों ये हर जमाने में होता आया है जब से हमारी दुनिया बनी है। ये बिल्कुल ठीक हर तरह से इब्तदा ही से ये चीज शुरू हो चुकी थी। अब उसने कहा खुदा का बीज खुदा का कलाम है। यीशु ने ये एक खास जगह पर कहा कलाम बीज है और हर एक बीज अपनी ही किस्म पैदा करेगा। और अब अगर मसीही खुदा के फर्जंद हैं, तो बादशाही के फर्जंद खुदा के बीज बन गए, तो फिर उन्हें जरूरी खुदा का कलाम होना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जिस जमाने में ये रह रहे हैं जाहिर हुआ, जो कि इस जमाने के लिए माउदा बीज है। खुदा ने अपना कलाम इब्तदा में दिया और हर जमाने में उसके पास उसका बीज था। ये वक्त उसके वादों का है। अब जब नूह मंजरे आम पर आता है, तो वो खुदा का बीज और खुदा का कलाम उस जमाने के लिए था। जब मूसा आया, तो वो नूह के पैगाम के साथ नहीं आ सकता था, क्योंकि ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुदा का बीज था, लेकिन अपने जमाने के लिए। फिर जब मसीह आता है, तो वो नूह या मूसा के जमाने के साथ नहीं आ सकता था, बल्कि ये तो उसका जमाना था कि कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और वो मसीहा होगा। अब हम लूथर के जमाने से निकल चुके हैं। वेस्ली का जमाना मेथोडिस्ट का था, इन तमाम जमानों में से होते हुए और पेंटिकोस्टल जमाने तक, और हर एक जमाना को वादा का कलाम दिया गया था, और उस जमाने के लोगों ने उस वादे के कलाम को जाहिर किया जो उस जमाने का बीज था। यीशु के कहने के मुताबिक ठीक यहाँ वो बादशाही के फर्जंद हैं। ये ठीक है कि रूहुल कुछ का जहूर उसके बेटों के जरिए काम कर रहा है, जो कि इस जमाने के लिए बादशाही का बीज है। कड़वे दानों पर गौर करें। दुश्मन शैतान है जिसने मुखालफत या तजाद का बीज बोया। ये खौफनाक काम करने का वही एक कसूरवार था। शैतान ने इब्तदा ही से अपना बीज बोया। जब खुदा ने अपनी पहली फसल बनी नौ इंसान को जमीन पर रखा, बेशक आदम अभी तक ठीक और गलत और हकीकत के इल्म को नहीं जानता था, और वो कभी भी उस तक नहीं आया था। मगर हमें मालूम है, खुदा अपने बच्चों को उनके दफा के लिए कलाम देता है। हमारे पास खुदा के कलाम से बढ़कर और कोई दफा नहीं है। यही हमारा दफा है। ना कोई बम, ना कोई पनागा, ना कोई छुपने की जगह, ना एरिजोना या कैलिफोर्निया की जगह या जो कुछ भी है। हमारे पास सिर्फ एक ही दफा है, और वो कलाम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, जो कि मसीह यीशु है, और वही सिर्फ हमारी पनाह है। उसमें होते हुए हम महफूज हैं। हकीकी ईमानदार का गुनाह भी हिसाब में नहीं लाया जाता। क्या आप ये जानते हैं? वो जो खुदा से पैदा हुआ है गुनाह नहीं करता, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। देखें, और ये गिना भी नहीं जाता। क्यों दाऊद ने कहा, मुबारक है वो आदमी जिसके गुनाह खुदा हिसाब में नहीं लाता। जब आप मसीह में हैं, तो फिर आपके अंदर गुनाह की ख्वाहिश नहीं होती। हर आबेद जो एक बार पाक हो चुका है, फिर उसके अंदर मजीद गुनाह करने की नियत नहीं होती, और ना ही आप इसकी तमन्ना करते हैं। अब आप दुनिया के लिए गुनाहगार हो सकते हैं, मगर खुदा के लिए नहीं, क्योंकि आप मसीह में हैं। आप कैसे गुनाहगार हो सकते हैं जबकि आप बेगुनाह में हैं? खुदा सिर्फ यीशु को देखता है जिसमें आप हैं। अब ये फसल काटने का वक्त है। इब्तदा में जब खुदा ने अपना बीज जमीन पर बोया, तो उसने अपने घराने में बोया, अपने बच्चों के दिल में बोया। वो उस कलाम को रखें, क्योंकि उनका सिर्फ यही दफा था। उस कलाम को रखें, और वहाँ ये दुश्मन अंदर आया और उस बाड़ को तजाद के बीज बोने के साथ तोड़ दिया, जो कि खुदा के कलाम के बरक्स था। अगर ये इब्तदा ही में तजाद था, तो ये अब भी है। कोई भी चीज या जो कुछ भी खुदा के कलाम में मिलाया जाएगा, तो वो तजाद का बीज होगा। मुझे परवाह नहीं ये कहाँ से आता है, अगर ये तंजीम से आता है या ये फौजी जराए से आता है, अगर ये सियासी कुव्वत से आता है, अगर कोई भी चीज जो खुदा के कलाम के बरक्स है, तो यही तजाद का बीज है। जब एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि वो अंजील का मुनाद है, और कहता है मौजजात के दिन गुजर चुके हैं, यही तो तजाद का बीज है। जब एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि वो एक खादम या किसी एक चर्च का पास्टर है, और वो ये ईमान नहीं रखता कि यीशु मसीह हर तरह से यक्सा है, मां सिवाय जिस्मानी जिस्म के, कल आज बल्कि अब तक यक्सा है, तो यही तजाद का बीज है। जब वो कहता है मौजजात और रसालत का जमाना गुजर चुका है, तो यही तजाद का बीज है। जब वो कहते हैं इलाही शिफा जैसी कोई चीज नहीं, तो यही तजाद का बीज है, और दुनिया इससे भरी पड़ी है। ये हजूम बनकर गेहूं को दबाता है। हम देखते हैं कि पहले तजाद के बीज की छाप लगाने वाला अबलीस था, और हम जानते हैं जैसा पदेश एक में था, और फिर हम मत्ती की किताब 13वें बाब में भी पाते हैं, यीशु अब भी हर उस बात को जो उसके कलाम के खिलाफ है अबलीस की छाप कहता है। और 1956 में तजाद की कुछ इस कदर अफजाइश हुई। इसलिए अगर कोई भी बात जो खुदा के लिखे हुए कलाम के बरक्स है या किसी की जाती तफसीर पर माकूफ है तो ये तजाद का बीज है। खुदा इसकी कदर नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता, इसमें मिलावट नहीं होगी, ये वाकई नहीं होगी। जिस तरह राई का दाना किसी चीज से मखलूत नहीं होता, आप इसे मखलूत नहीं कर सकते, इसे तो हकीकी होना है, तजाद का बीज। अब हम देखते हैं कि जब खुदा ने बागे अदन में अपना बीज बोया और हमें पता है कि ये हाबल को लाया था, मगर जब शैतान ने अपना तजाद का बीज बोया तो ये काइन को लाया था। एक एक रास्तबाज को लाया और एक एक नारास्त को लाया, क्योंकि हवा ने तजाद का कलाम सुना जो कि खुदा के कलाम के बरक्स था, और तब से गुनाह की गेंद ने घूमना शुरू किया और अब तक घूम रही है, और हम इस चीज को कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे जब तक फरिश्ते आकर अलग ना करें। और खुदा अपने बच्चों को बादशाही के लिए लेगा और कड़वे दानों को जलाने के लिए लेगा। इन दो दरख्तों पर ध्यान दें। काश के हमारे पास इस मजमून के लिए मजीद वक्त होता, मगर अब हम सिर्फ अपने निशान की तरफ चलते हैं ताकि अगले कुछ मिनटों में हम बीमारों के लिए दुआ कर सकें। गौर करें, उनके बीज इकट्ठे बढ़े, बिल्कुल जिस तरह खुदा ने मत्ती 13वें बाब में कहा, और आज रात हमारा उन्वान भी मत्ती से है, इन्हें इकट्ठा बढ़ने दो। अब काइन नूद की सरजमीन में गया, अपने लिए एक बीवी तलाश की और शादी की, और हाबल जबा किया गया और खुदा ने उसके इस सेध दिया, और नस्लों ने ठीक और गलत के दरमियान अमल दरामद करना शुरू कर दिया। अब हम ध्यान देते हैं कि उनमें से हर एक वक्तन फवक्तन इकट्ठे हुए और खुदा को कुछ करना पड़ा। ये इतने बदकार हो गए थे कि खुदा को उन्हें तबाह करना पड़ा, लेकिन आखिरकार जब तक ये दोनों बीज निकलकर सामने ना आए, यानी खुदा का बीज और तजाद का बीज जो के अपने अपने हकीकी सरबराहान रखते थे, और वो यीशु मसीह और यहूदा इस्करियोती में जुड़े हुए थे, क्योंकि यीशु खुदा का बीज था, वो खुदा की खलकत का मबदा था और वो खुदा से कम नहीं था, और यहूदा इस्करियोती हलाकत का फर्जंद होने के लिए पैदा हुआ था, जहन्नुम से आया और वापस जहन्नुम में गया। यीशु मसीह इब्ने खुदा था, खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ था। यहूदा इस्करियोती अबलीस का बीज था जो तजाद की शक्ल में दुनिया में आया और धोखा दिया, जिस तरह इब्तदा में उसके कदीम बाप काइन ने भी किया था। यहूदा सिर्फ कलीसिया से खेला, वो वाकया ही संजीदा नहीं था, दरअसल वो बेईमान था, वरना वो कभी भी यीशु को धोखा ना देता। लेकिन देखें, उसने तजाद का बीज बोया, वो सोचता था कि वो दुनिया और दौलत से दोस्ती कायम रख सकता है और इसी तरह यीशु से भी दोस्ती कायम रख सकता है, मगर इस सिलसिले में कुछ भी करने के लिए वो बहुत देर कर चुका था। लेकिन जब मौत की घड़ी आई और जब उसने ये बुराई की, वो हद बंदी की लकीर को पार कर चुका था जो के आगे जाने या पीछे आने के दरमियान थी। जिस राह पर वो गया उसे उसी राह पर एक धोखेबाज होते हुए जाना था। उसने तजाद का बीज बोया, उसने कोशिश की कि उन दिनों की बड़ी तंजीमों में और फरीसियों और सदूकियों की हमायत हासिल कर सके, और सोचा कि अपने लिए दौलत कमाकर वो लोगों के दरमियान मशहूर हो जाए। और क्या इंसान की हमायत हासिल करने की कोशिश बहुत से लोगों के लिए तजाद का बीज का सबब ना बनी? आए खुदा की हमायत हासिल करें, ना के इंसान की, ना के इंसान की। मगर यहूदा ने यही किया जब उसके अंदर इन तजादात ने सर उठाया। और हम जानते हैं कि यीशु कलाम था। मुकद्दस यूहन्ना 1 ने कहा, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। बस कलाम बीज है, तब ये बीज मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। मगर यहूदा दुश्मन का बीज और तजाद था, वो भी मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान यहूदा इस्करियोती की शक्ल में रहा। उसके पास कभी भी सच्चा और हकीकी ईमान नहीं था। उसके पास जो था उसने सोचा यही ईमान है, और ईमान की एक और किस्म भी है जो कि एक बनावटी ईमान है। खुदा का हकीकी ईमान खुदा पर ही यकीन करेगा, और खुदा का कलाम है और ये इसमें कभी भी कुछ नहीं बढ़ाएगा। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम एक लफ्ज भी इसमें से बढ़ाते या एक लफ्ज भी घटाते हैं तो हमारा हिस्सा उस जिंदगी की किताब से खारिज कर दिया जाएगा। मुकाशवा 22:18 जो कि आखिरी इख्तितामिया बाब है, इब्तदा के आगाज ही से बाइबल की पहली किताब ही में खुदा ने उन्हें बताया कि उसका एक लफ्ज भी ना तोड़ना, हर लफ्ज जरूर कायम रखना, वो जरूर इस कलाम के साथ जिए। जब यीशु इस किताब के वस्त में आया और अपने जमाने में कहा, और उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और इस मुकाशवा के इख्तितामी जमाना में हमें पहले ही से बता दिया गया है, जो कोई भी इस किताब में से एक लफ्ज भी बढ़ाए या एक लफ्ज भी घटाए तो उसका हिस्सा किताब हयात से निकाल दिया जाएगा। इसलिए इसमें जरा भी मिलावट नहीं, बल्कि ये एक हकीकी और खालिस खुदा का कलाम है। ये वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो इंसान की ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए, या हाथ मिलाने के वसीला से नहीं, या किसी बपतिस्मे की शक्ल के वसीला से नहीं, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए, रूहुल कुद्स के वसीला से पैदा हुए, और कलाम उनके वसीला से मुजस्सम हो रहा है। यही तो खुदा का हकीकी बीज है, और दुश्मन कलीसिया से जुड़ जाता है और बहुत रवायत पसंद अकीदों या कुछ चीजों में बन जाता है। लेकिन क्या ये नहीं, यही तो तजाद है। अगर कोई भी चीज जो हकीकी सच्चे खुदा के कलाम में मिलावट के साथ मुदाखलत करे तो यही तजाद है। और हम कैसे जानते हैं, हम कहते हैं ठीक है, इन्हें या आपको इसकी तशरी करने का हक हासिल है। नहीं जनाब, किसी आदमी को खुदा के कलाम की तफसीर करने का कोई हक नहीं है। खुदा आप अपना तर्जमान है, उसने इसका वादा किया फिर वो ये करता है, यही उसकी तर्जमानी है। जब उसने उसका वादा किया है तो फिर वो उसको पूरा भी करता है, यही उसकी तर्जमानी है। कोई भी बात जो खुदा के कलाम के बरक्स है बिल्कुल तजाद है। अब जैसा कि मैं कह चुका हूँ, यहूदा के पास हकीकी ईमान नहीं था, उसके पास बनावटी ईमान था, उसके पास एक ईमान था और वो सोचता था कि वो खुदा का बेटा है, मगर वो नहीं जानता था कि खुदा का बेटा क्या होता है, वरना उसने ये ना किया होता। अगर एक आदमी जो खुदा के कलाम के सच्चा होने पर भी समझौता करेगा तो फिर उसने बनावटी ईमान हासिल किया हुआ है। हकीकी खुदा का खादम उसके कलाम के साथ ही खड़ा रहेगा। कुछ रातें पहले एरिजोना का एक फ्लाफ खादम इस शहर के बड़े नामवर स्कूल से मेरे पास आया और कहा, मैं कुछ बातों में आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा जब भी आपको मौका मिले। मैंने कहा ये बेहतरीन मौका है, मैं चाहता हूँ आए, और लिहाजा वो आया। उसने कहा मिस्टर ब्रैनम, तुम कोशिश कर रहे हो, मैं यकीन करता हूँ तुम संजीदा और दयानदार हो, मगर तुम दुनिया में रसूली तालीम मुतारिफ कराने की कोशिश कर रहे हो। और कहा रसूली जमाना रसूलों के साथ ही खत्म हो गया था। मैंने कहा मेरे भाई, पहली बात जो मैं आपसे पूछना पसंद करूंगा, क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा का हर लफ्ज इलहामी है? उसने कहा जी जनाब, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने कहा फिर क्या आप मुझे कलाम में दिखाएंगे कहाँ रसूली दौर खत्म हुआ? अब आप मुझे दिखाएं ये कहाँ पर है, मैं आपके साथ ईमान रखूंगा। और मैंने कहा सिलसिला रसालत के एक मुसन्निफ के पास बादशाही की कुंजियां थी, और पेंतिकोस के दिन जब रसूली जमाना मुतारिफ हुआ था तो उन्होंने कहा ए मर्दो और भाइयों, हम क्या करें कि निजात पाएं? उसने कहा तोबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से भी है और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। अब कैसे कलाम अपने ही खिलाफ हो सकता है? उस आदमी ने कहा मैं एक खौफनाक सर्द रात में हूँ। मैंने कहा मेरा भी यही ख्याल है, समझे? अब आप मुझे बताएं, क्या खुदा आज भी बुला रहा है? अगर खुदा आज भी बुला रहा है तो फिर रसूली दौर आज भी मौजूद है। यकीनन जितनों को खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा, जब भी बुलाएगा, जितनों को वो बुलाएगा तो फिर रसूली जमाना तब तक रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है। अब आज हमें मालूम है ये तजाद हर जमाने में बोया गया। अगर मुमकिन हो तो हम अगले 10 या 15 मिनटों में इसे खत्म कर लें, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। जमानों में से गुजरते हुए हम सब में से ज्यादातर बाइबल पढ़ते हैं, और इस तरह जब यीशु आया तो उसने मुखालफत और तजाद पाया। वो मुजस्सम कलाम था, वो खुदा के कलाम की तर्जमानी था, क्योंकि उसने कहा नविश्तों में से तलाश करो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अबदी जिंदगी है और वो हैं जो के मेरी गवाही देते हैं। आप यहाँ हैं, वो खुदा के कलाम की तर्जमानी था, और खुदा का हर बेटा और बेटी जो नए सिरे से पैदा हुए हैं वो इस जमाने में खुदा के कलाम की तर्जमानी करते हैं। आप लिखे हुए खतूत हैं ताकि सब आदमी पढ़ें। जी हाँ, गौर करें, उसने कहा ये बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं क्योंकि तजाद की तालीम देते हैं। बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं, मुतजाद तालीम देते हैं। इंसानी तालीम इंसानी अकायद सिखाते हैं। ये खुदा का कलाम है जबकि खुदा का कलाम इसमें नहीं होता है। देखें, हर जमाने ने ऐसी फसल पैदा की, हर जमाने ने ये किया, और हमारा जमाना भी इससे बरी नहीं है। हमारे जमाने में भी वैसी ही बातें हैं, और अगर सब जमानों को इकट्ठा किया जाए तो ये सबसे बड़ा जमाना है, क्योंकि दुनिया की तवारीख का इख्तिताम है। जमीन पर कभी इतना तजाद नहीं हुआ जितना के आज इस सरजमीन पर है। यही तजाद दूसरे जमानों में इन्हें सच्चे और जिंदा खुदा से खींचकर बुतों में ले गया। आज भी यीशु मत्ती 24:24 में कहता है कि ये इतना करीब होगा, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। ये तजाद के बारे में बात है। ओ, ये बहुत चलाक है। शैतान लोगों के दरमियान है जैसा कि एक मजहबी आलिम, और जैसे के इल्मे इलाहियात का डॉक्टर जो के कलाम को मुकम्मल तौर पर सिखा सकता है। यीशु ने इसीलिए कहा, मगर सिर्फ इस पर गौर करें, वो यही कहीं होगा और कहता होगा ठीक है, अब ये इस वक्त के लिए नहीं है। ओ जी हाँ, देखें ये इस तरह है क्योंकि खुदा ने ये कहा था। देखें इसने क्या किया, यही तजाद नूह के दिनों में उन पर खुदा का गजब लाया, जब खुदा ने अपना नबी भेजा और आग के शोला की तरह मुनादी की गई और लोगों को तौबा के लिए बुलाया गया और तजाद डूब गया। फिर शैतान ने क्या किया, हाम के पीछे आया और दोबारा ये बोना शुरू किया। ये बिल्कुल दुरुस्त है। फिर एक अजीम नबी मूसा आया जो बनी इसराइल को बाहर बियाबान में लाया। फिर क्या हुआ, मूसा एक अजीम खुदा का नबी था, उनके पास हतमी सच्चाई और साबित की गई सच्चाई लाया। वो खुदा से मिला, खुदा ने साबित किया कि वो उससे मिला था। उन लोगों का पस्से मंजर क्या था, वो काहिन थे और उनके मजाहब, उनकी रसूम, उनके दस्तूर, ये सब कुछ उनके पास था, मगर मूसा वहाँ कलाम की तर्जमानी को साबित करने के लिए खड़ा था। इसे मत भूलें, मूसा खुदा के अपने वादे की तर्जमानी था, उसने कहा था वो ये करेगा, वो खुदा का तर्जमान था। क्या हुआ, मिस्र से कलीसिया का खरूज शुरू हो गया, कुछ ही दिनों में अपने पांव पर खड़ी हो गई, और क्या हुआ, शैतान भी अपने तजाद के साथ आया, एक शख्स में आया दूसरे काइन में जो के बलाम था, और उसने उनके दरमियान तजाद बोया। हम जानते हैं ये सच है, वो बलाम, बलाम की तालीम कि हम सब एक हैं, उसी खुदा की खिदमत करते हैं जिसकी तुम करते हो, बुनियादी तौर पर वो ठीक था क्योंकि उसने एक कुर्बानी चढ़ाई जो खुदा की पेशकश थी, 7 मेंढे और 7 बैल, 7 कुर्बान गाहें, और उसी खुदा से दुआ की जिससे बिल्कुल मूसा ने बियाबान में की थी, बिल्कुल एक जैसे, मगर वो एक जैसे नहीं थे। ये पेशतर अक्स था जो हमें बताता है कि क्या होगा। यहाँ उस शख्स बलाम के अंदर दोबारा काइन वाजे तौर पर जाहिर हुआ, और वहाँ उस शख्स मूसा में खुदा आया हुआ जो अपने कलाम की तर्जमानी इंसान के जरिए कर रहा था, अपने आप को और अपने वादों को एक इंसान के जरिए जाहिर कर रहा था। तब तजाद भी उठ खड़ा हुआ। ऐसा ही यहूदा के वक्त भी हुआ, वो अपने तजाद के साथ आया, और याद रखें, ये गुनाह था जिस पर वो लोग ईमान रखते थे कि हम सब एक हैं, हम एक खुदा की इबादत करते हैं, हम सबका एक ही कलीसिया से ताल्लुक होना चाहिए, हमें एक जैसे लोग होना चाहिए। ये वो गुनाह था जिसके लिए इसराइल को कभी भी माफ ना किया गया। यीशु ने खुद कहा वो सब मर गए, मगर उन 3 के अलावा बाकी सब मर गए। वो लोग थे जो वादे के ईमान को पकड़े रहे, जब डरपोकों ने कहा हम इस मुल्क को नहीं ले सकते हैं और हमारे लिए तो यही काफी है, और वगैरह वगैरह। कालिब और यशुआ ने लोगों को चुप करवाया और कहा हम उसे हासिल करने से बढ़कर हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे साथ इसका वादा किया है, मुझे परवाह नहीं मुखालफत कितनी है, और हम अब भी इलाही शिफा और रूल कुछ के बपतिस्मे की मुनादी कर सकते हैं, और खुदा की कुवत अब भी हमें दुनिया की चीजों से अलग करती है। खुदा ने ऐसा ही कहा, रसूली जमाना कभी खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म होगा, ये जारी है। लिहाजा हम यहाँ वही पुराने तजाद बोने वाले को पाते हैं, मगर याद रखें, वो गुनाह कभी भी माफ नहीं किया गया। अब भाई, अगर उस वक्त नहीं माफ किया गया तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है, जबकि तमाम जमानों के हकीकी बीज इकट्ठे हो रहे हैं। गौर करें उस बड़ी बात पर जो बलाम ने की, यह बढ़ती गई बढ़ती गई और आखिरकार यीशु और यहूदा इस्करियोती तक आ गई। ये क्या था? यहूदा और यीशु ठीक बिल्कुल काइन और हाबल की एक मिसल थे। चूंकि काइन मजहबी था लिहाजा यहूदा भी मजहबी था। काइन ने एक मजहबा बनाया और एक कुर्बानी गुजरानी। उसने खुदा की इबादत की। वो ठीक वैसे ही संजीदा था जैसे कोई एक दूसरा। लेकिन आप देखें उसके पास कलाम का मुकाशफा नहीं था। उसने सोचा कि आदम और हवा ने कुछ सेब खाए या कोई फल खाया था और काइन मगर हाबल मुकाशफा के जरिए जानता था कि ये गलत था। ये वो लहू था जो उनको बाहर ले आया, इसलिए उसने बड़ा कुर्बान किया और खुदा ने उसकी कुर्बानी की तस्दीक की कि ये दुरुस्त है। तब काइन गुस्से से भर गया और अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश की और उसने अपने भाई को उसी मजबा पर कत्ल किया जिस पर कुर्बानी गुजरानी गई थी। बर्रा मजबा पर जबा हुआ। लिहाजा यहूदा इस्करियोती ने यीशु को खुदा के मजबे पर धोखा दिया और उसको कत्ल किया ठीक जैसे काइन ने हाबल को कत्ल किया, क्योंकि काइन तजाद का बीज था और ऐसा ही बलाम था, किराए का नबी, एक आदमी जिसे बेहतर मालूम होना चाहिए था। और खुदा ने उसको हैरत अंगेज निशानों और एक गदी के जरिए अजनबी जुबानों में खबरदार किया और फिर भी वो उसी तरह चलता रहा। वो एक तजाद का बीज बोने वाला ही पैदा हुआ था और यीशु ने ये पेशनगोई की थी कि जमाने के इख्तिताम पर बहुत ज्यादा तजाद होगा जो कभी हो सकता था। लौदीकिया की कलीसिया का जमाना नीम गर्म है जिसने उसको कलीसिया से बाहर निकाल दिया है और ये तजाद के अलावा क्यों कर कुछ और हो सकता है? यकीनन ये है और इस जमाने में इसकी इंतहा है और ये काइन और हाबल फिर कलवरी पर मौजूद हैं। अब गौर करें, जैसे ही बर वक्त यीशु उनसे दूर आसमान पर चला गया और रूहुल कुछ को वापस भेजा, वो बीज था कलाम को जिंदगी देने वाला, जैसा कि हमने कल रात सीखा था। यही वो एक है जो कलाम को जिंदा करता है और जिंदा करने का मतलब है जिंदगी को लाना। हकीकी रूहुल कुछ सिर्फ जिंदगी को लाता है जो के कलाम में है। वो किसी बनाए हुए अकीदे में जिंदगी नहीं लाएगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि बनाया हुआ अकीदा कुछ नहीं है, बल्कि वो खुदा के कलाम की जिंदगी है, इसलिए कि वो खुदा है। देखें, और ये इस इंसान को जिंदा करती है। अब ध्यान दें, जैसा कि उन्होंने किया और फिर बाइबल भी कहती है और यूहन्ना भी अपने बच्चों से बोला और कहा, ऐ छोटे बच्चों, तुम मुखालफ मसीह के बारे में सुन चुके हो जो दुनिया में आने वाला था और कहा जो के दुनिया में है और नाफरमान बच्चों में काम कर रहा है। अब वो 30 साल से साथ था जब से रूहुल कुछ की आमद हुई है। हम पाते हैं कि जब रूहुल कुछ आया जो के हकीकी बीज है, हकीकी जिंदगी देने वाला बीज है, तो फिर यहाँ दोबारा तजाद का बीज भी आ गया। और गौर करें, ये बढ़ता चला गया। ये हकीकी कलाम साबित किया गया था। पुराने नबियों ने खुदा के कलाम का सच्चा होना साबित किया जैसे वो जाते गए। अगर किसी ने भी नासियाई काउंसिल को पढ़ा हो या पहली नासियाई काउंसिल को, उनकी 15 दिन की मिलावटी सियासत को, जब वो रोमियो का ग्रोह वहाँ गया और कलीसिया में से तंजीम बनानी चाहिए, तो तब भेड़ की खाल ओढ़े और साग पात खाने वाले नबी आए और कलाम के लिए खड़े हुए। मगर इससे क्या हुआ? ये तो काइन की तरह ही होना था, ये तो हाबल की तरह होना था, एक को तो मरना था, वाकई ये होना था। और कलाम का असर रसूख लोगों में से खत्म हो गया और उन सब ने वोट देकर मजहबी अकीदों का तजाद इब्तदाई कैथोलिक कलीसिया से लिया और सच्चे कलाम को बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक पोप बना लिया, उन्होंने एक बिशप बना लिया, उन्होंने ये वो दूसरी चीजें बना ली। उन्होंने पत्रस के असल हकीकी मतलब को निकाल दिया और मरियम के और बाकी सबके बुत बना दिए और कुछ नहीं मगर बेदिन रसूमात से नाम नहाद एक मसीही मजहब बनाया। ये क्या था? तजाद का बीज और मुनज्जम होना, पहली मर्तबा जमीन पर एक कलीसिया का मुनज्जम होना। ये क्या था? ये तजाद का बीज था जो बोना शुरू किया गया, कुछ बढ़ाना और कुछ घटाना। क्या किसी ने कभी बाइबल से सुना है कि जुमे को गोश्त नहीं खाना चाहिए? क्या किसी ने कभी बाइबल में से सुना है कि गोते के बपतिस्मे की बजाय छड़काव का बपतिस्मा लेना चाहिए? क्या किसी ने कभी ये बातें सुनी है, सलामे मरियम या ऐसी चीजें? क्या किसी ने कभी ऐसी प्रोटेस्टेंट की गली सड़ी बातों को सुना है, प्याला केतली को गंदा नहीं कह सकता? ठीक है, बेशक थोड़े का मुजरम पूरे का मुजरिम है। کیا کسی نے سنا ہے کہ خدا نے کبھی ایک تنظیم سے تعلق رکھا ہو؟ مجھے ایک بھی بار دکھائیں جب کبھی کوئی ایک تنظیم منظم ہوئی ہو اور پھر زندہ رہی ہو۔ وہ فوراً مر گئے اور دوبارہ نہیں اٹھے۔ یہ وقت ہے کہ کچھ وقوع میں آئے۔ یہ خدا کے کام کرنے کا وقت ہے۔ اس اثر و رسوخ کو لوگوں کے درمیان سے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہی کچھ آج کیا جا رہا ہے۔ یہ اثر و رسوخ کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو وہ جنونیوں کا جن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ تضاد ہے۔ کلام سے روبرو ملیں اور دیکھیں یہ کیا ہے۔ دیکھیں خدا اپنے کلام کی ترجمانی کرتا ہے۔ خدا اس قابل ہے کہ ابراہیم کے لیے ان پتھروں سے بھی اولاد پیدا کرے۔ آمین۔ ان ابتدائی مسیحوں کے وسیلہ کلام ثابت کیا گیا۔ کیسے خدا نے ان کو سب چیزوں سے اور بیماریوں سے چھڑایا اور ان کے پاس نبی بھیجے اور وہ زبانوں میں بولے، انہوں نے ترجمہ کیا اور پیغامات دیے اور ہر وقت بالکل سچے ثابت ہوئے۔ لیکن ان سب کے سامنے کلام کی تصدیق کی گئی، مگر لوگوں نے ووٹ دے کر اسے باہر نکال دیا اور ووٹ دے کر ایک تنظیم لائے، اور یہ تمام تنظیموں کی ماں تھی۔ اب دونوں بیج مکمل پک چکے ہیں، وہ دوبارہ سے بیج بو رہے ہیں۔ یہ مر گیا تھا لیکن لوتھر کے دنوں میں دوبارہ یہ پھول کھلا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغام میں جو یہاں صبح ناشتے پر دیا گیا تھا، یہ پھول لوتھر کے دنوں میں کھلا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس عظیم شخص کے مرنے کے بعد فوراً ہی انہوں نے ایک تنظیم بنا لی، اور یہی پھول دوبارہ جان ویسلی کے دنوں میں پھر کھلا، جبکہ ان اینگلیکن نے اپنے تمام ابدی تحفظ میں سب کچھ کو باندھ کر ایک جگہ جمع کیا جو کہ عالم گریت ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اور سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ پھر خدا نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام جان ویسلی تھا، اور جیسے ہی وہ مرا پھر ایس بیری اور دوسروں نے کیا کیا؟ وہ سب منظم ہو گئے، اور اب آپ تمام اقسام کے میتھوڈسٹ پاتے ہیں، اور پھر ایک یا دوسرے کے ساتھ الیگزینڈر کیمبل، جان سمتھ اور باقی سب آئے۔ آخر میں پینتیکوسٹ ان سب کو برخاست کر کے ان میں سے نکل آئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بہت اچھے چلے، تم کو کس نے روکا؟ تم واپس اسی دلدل میں چلے گئے ہو جہاں سے تم نکلے تھے، اسی ڈلان پر واپس چلے گئے ہو، اور واپس تضاد میں چلے گئے اور تنظیمیں بنائی اور کلام پر سمجھوتا کیا، اور ہر وقت خدا کچھ تازہ بھیجے گا لیکن تم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک دوبارہ تضاد ہے۔ دھیان دیں، اور جیسا کہ میں نے اس دن کہا تھا کہ پہلے چھوٹا سا چھال اس جڑ میں سے نکلا، پتوں میں گیا، اور پھر پھندنی میں آیا، پھر واپس ڈنٹھل میں آیا اور باہر نکلا۔ وہ گیہوں کا چھوٹا سا بھوسا تقریباً یہ اناج ہی لگتا ہے، اور ہم یہی سوچتے تھے، لیکن جب آپ اسے کھولتے ہیں تو اس میں کہیں بھی اناج نہیں ہے۔ یہ تو صرف دانے کی نشوونما کی مدد کے لیے ہے، اور یہ بھی مر جاتا ہے، اور اس میں سے زندگی نکل جاتی ہے اور دانے میں چلی جاتی ہے۔ غور کریں، اس لیے وہ کلیسیوں کو کہتے ہیں جو بوتی گئیں۔ آج ہم نام نہاد کلیسیوں کو پاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پینتیکوسٹل بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم باہر نکل گئے، ہم مطمئن نہ ہو سکے، ہم نے اپنے ہی جھنڈ بنا لیے، ہر چیز نکل کر آئی، ہمیں یہ کرنا پڑا، ہمیں وہ کرنا پڑا، ہمیں ایک دوسرا گروپ بنانا پڑا۔ اور کچھ ساتھی اٹھے اور کہا وہ سفید بادل پر آ رہا ہے، ایک دوسرے نے کہا ارے وہ ایک سفید گھوڑے پر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دو گروپ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ تضاد کو بونا۔ لیکن جب وہ آتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، تو وہ خود اپنے کلام کی ترجمانی کرنے کے لیے آئے گا۔ آئیں اس وقت تک انتظار کریں۔ دیکھیں اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، جس وقت کے پیغام کو آپ قبول ہی نہیں کرتے۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ ہمیشہ اس کی طرف اشارہ کریں یا وہ کیا کر چکا ہے، اور اگر نظر انداز کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم تضادات پاتے ہیں۔ اب آج ہمیں اپنی کلیسیوں پر دھیان دینا چاہیے۔ تمام کلیسیاں ہواؤں کو بھیج چکی ہیں اور گرد باد کو کاٹ رہی ہے۔ ہماری وہ دعائیں عبادت نہیں رہی، ہماری وہ عبادت نہیں رہی جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے ہر چیز پر سلاخیں لگا دی ہیں، یہاں تک کہ ہماری پینتیکوسٹل کلیسیوں کو دیکھیں، بال کٹی ہوئی عورتوں سے بھری پڑی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، رنگے ہوئے چہرے اور ناخن پالش اور سب اقسام کی چیزیں، اور آدمیوں کو یہاں دیکھیں ریکیوں کی طرح، اور اسی طرح ڈیکنوں نے تین یا چار مرتبہ شادی کی ہوتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اوف، یہ کیسا تضاد ہے، یہ نجاست ہے۔ وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا خدا اپنی کلیسیا میں یہ چاہے گا؟ ان کو یہ سب کرنے کے لیے کسی تنظیم میں جانا پڑے گا، اس لیے ہر کوئی اس کے بارے میں کچھ کہنے سے ڈرتا ہے، ورنہ وہ اسے ٹھوکر مار کر اپنی تنظیم سے نکال دیں گے۔ خدا ہمیں ایسے آدمی دے جو کسی سے نہ جڑے ہوئے ہوں، مگر خدا سے اور اس کے کلام سے، جو اس کے بارے میں سچ سچ بتائیں۔ بالکل ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ हमने क्या किया? तज़ाद बोया, हम हवाओं को बो चुके हैं और अब हम गिर्दबाद काट रहे हैं। ध्यान दें कि अब वो जलने के लिए आपस में जमा हो रहे हैं। क्या आपने तवज्जो दी? यीशु ने कहा, पहले उन्हें जमा करो, उनके गट्ठे बांधो और फिर उन गट्ठों का एक अंबार लगाओ और मैं उनको जला दूंगा। ये छोटे गट्ठे जो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और लूथरन कहलाते हैं, ये सब वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या है? पहले उनको इकट्ठा करो। हालेलुया! क्या आपने गौर किया? वो कड़वे दानों को पहले इकट्ठा करता है, उनको गेहूं से अलग करता है, उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है और जला देता है। लोगों के दरमियान तजाद बोने की वजह से ये सब खुदा की अदालत से जल जाएंगे। ये है वो बात, वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं मगर उसके असर को कबूल नहीं करते, कलाम का इनकार और सिर्फ मजहबी दस्तूर को थामे रखते हैं। अगर कोई किसी अकीदे को खुदा के कलाम में जोड़ने की कोशिश करता है तो ये काम नहीं करेगा। ये तजाद है। मैं आज चिल्लाता हूँ जैसे कि बहुत अरसा पहले अजीम नबी अमूस चिल्लाया था जब वो शहर में आया और कहा, मैं नबी नहीं हूँ, न ही नबी का बेटा, लेकिन जब शेर बबर गरजता है तो कौन न डरेगा। उसने कहा, जब खुदा बोलता है तो कौन नबुवत न करेगा। उसने उस पुष्ट पर अदालत की पेशनगोई की और कहा, जिस खुदा की खिदमत का तुम दावा करते हो वही तुमको नेस्त कर देगा। आप इसको टेप पर रख दें और आप याद रखें, यही खुदा अब ये लोग जो बड़ी फसल की मकदार में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में जमा हो रहे हैं, और आपको इसमें शामिल होने के लिए जाना पड़ेगा। आप इससे बाहर नहीं रह सकते, आपको शख्सी तौर पर इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा या फिर आप इसमें जा रहे हैं। कोई दरमियानी जगह नहीं, यही हैवान की छाप होगी। कोई आदमी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता जब तक वो उसकी छाप ना ले या तजाद ना पाले। अब इससे लग रहें, इससे बाहर निकलें, भाग जाएं, इससे दूर रहें। वही खुदा जिसकी खिदमत का ये दावा करते हैं इनको नेस्त कर देगा, यानी मोहब्बत का अजीम खुदा क्या ऐसा नहीं करेगा? और कहते हैं, ठीक है, यीशु ने दुआ की कि हम सब एक हों, तो फिर यीशु ने ये भी कहा था, कैसे तुम इकट्ठे चल सकते हो जब तक तुम मुत्तफिक ना हो? दो इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? उसने कहा, एक जैसे वो और बाप एक हैं, और बाप कलाम था और यीशु मुजस्सम कलाम था, वो बाप के साथ एक था क्योंकि वो खुदा के माउदा कलाम का जहूर था। और ऐसा ही आज है या किसी दूसरे दिन भी। जी जनाब, खुदा एक है, वो चाहता है कि हम भी एक हों। ये कैसे एक हो सकते हैं जबकि एक कुंवारी से पदेश का इनकार करता है मगर इलाही शिफा का इकरार करता है, और ये और वो इस तरह इनमें गड़बड़ है। उनमें से कुछ तो खुदा पर ईमान नहीं रखते कि वो खुदा का बेटा था, बल्कि ईमान रखते हैं कि वो यूसुफ का बेटा था जो कि इब्ने खुदा कहलाया। यकीनन ये जुड़वा भाई लूथरन और ज्वेंगली यही ईमान रखते हैं। वो तो बिल्कुल एक अच्छा इंसान था। क्रिश्चियन साइंस वालों ने कहा कि वो एक नबी था, सिर्फ एक आम इंसान, वो इलाही नहीं था। क्यों? अगर वो इलाही नहीं था तो फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज था जो कभी हुआ हो। वो खुदा था या फिर कुछ भी नहीं था, वो इलाही था, वो अलूहियत था, वो खुद हमारे दरमियान था, इब्ने खुदा की सूरत में मुजस्सम हुआ। यकीनन वो यही था। अब हम देखते हैं कि तजाद अंदर आ गया। हम जानते हैं कि वो यहाँ है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। ओ मेरे खुदाया, सिर्फ ध्यान दें, वो इस जुन को नेस्त कर देगा जो दावा करते हैं कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आप इस पर ध्यान दें, खुदा ने अपना बीज बोया। अब मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि दुआया कतार का वक्त हो गया है। खुदा ने अपना बीज बोया और उसका बीज मसीह है। मैं कुछ रातों के लिए इस पर मुनादी करने जा रहा हूँ जहाँ खुदा ने अपना नाम रखने का इरादा किया है। खुदावंद की मर्जी हुई तो हो सकता है किसी एक नाश्ते पर जब मेरे पास मजीद वक्त हुआ। देखें, वही एक बच निकलने का रास्ता है, सिर्फ वही एक सच्चा जहाँ पना है, वही सिर्फ सच्चा खुदा है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ, मैं वाहिद खुदा हूँ, उसने कहा। यीशु ने कहा, ये हुक्म है, सुन ए इसराइल, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, सिर्फ वाहिद खुदा, मैं ही वो हूँ। तुम दूसरे की तलाश क्यों करते हो? दूसरा आएगा, मगर मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। लेकिन एक दूसरा जो अपने ही नाम से आएगा और तुम उसे कबूल करोगे, और ये उन्होंने नासिया में किया। क्या आप एक मसीही हैं? मैं एक बैप्टिस्ट हूँ। क्या आप एक मसीही हैं? मैं पेंटिकोस्टल हूँ। क्या आप एक मसीही हैं? मैं मेथोडिस्ट हूँ। यही एक दूसरा नाम है। लेकिन जब यीशु मसीह का नाम आता है तो वो इससे दूर भाग जाते हैं जितना के वो भाग सकते हैं। वो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते क्योंकि वो कलाम है और कलाम अपने आप को जाहिर करता है। गौर करें, सिर्फ यही बच निकलने की राह है, वो शारून का गुलाब है। बाइबल कहती है वो था, खुदा का हर लकब बाइबल में यीशु मसीह से ताल्लुक रखता है। वो अल्फा ओमेगा इब्तदा और इंतहा था, जो था, जो है, जो आने वाला है, दाऊद की असल और नस्ल है। दाऊद की असल और नस्ल दोनों, सुबह का सितारा, शारून का गुलाब, वादी का गुले सोसन, अल्फा ओमेगा, बाप बेटा रुलकुस, सब यीशु मसीह में है। वो यहोवा खुदा का भरपूर जहूर मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। वो बिल्कुल यही था, वो शारून का गुलाब था। उन्होंने शारून के गुलाब के साथ क्या किया? उन्होंने उसको निचोड़ा, पीसा, ताकि उसमें से इतर हासिल करें। एक खूबसूरत गुलाब को मसला ही जाना था, ताकि उस गुलाब में से इतर हासिल किया जाए। वो एक खूबसूरत जिंदगी थी, उस जैसी जिंदगी कभी भी नहीं जी गई, मगर उसे कलवरी पर कुचला जाना ही था। देखें, उन्होंने शारून के गुलाब का मसा लिया और हारून पर डाला, उसको उसी से मसा किया जाना था, ताकि वो खुदा के पाक मकाम के सामने रहे, ताकि मुकद्दस पर्दे में जा सके। उसे शारून के गुलाब ही से मसा किया जाना था, ताकि हर साल रहम के तख्त पर छिड़काव करे, और वो मसा उस पर होना ही चाहिए था, एक राहत अंगेज खुशबू के तौर पर खुदावंद के लिए। फिर वो बरे का लहू इसके सामने लाता, इसके बाद इस बरे के वसीला छिड़काव किया जाता था, और जो इनार और घेंटियाँ उसके लिबास पर लगी होती थी, वो खास अंदाज में चलता और वो बजती थी, पाक पाक खुदावंद के लिए पाक। ध्यान दें, वो शारून का गुलाब है, ताकि खास राहत अंगेज खुशबू का मसा उसके लोगों पर हो। आप उसके सामने किसी अकीदे के साथ और किसी दूसरी चीज के साथ नहीं आ सकते, मगर शारून के गुलाब के मसा के साथ, जो कलाम है, आ सकते हैं। वो वादी का गुले सोसन है। अब हम अफ्यून कैसे हासिल करते हैं? जब आप एक गुले सोसन को लेते और निचोड़ते हैं, तब आप अफ्यून हासिल करते हैं। आप इसी तरह अफ्यून हासिल करते हैं। डॉक्टर इसे अपनी लेबोरेटरियों में इस्तेमाल करते हैं। एक बेचैन और परेशान आदमी को लें, या एक औरत जो ये महसूस करती हो कि वो पागल हो रही है, वो फर्श पर दौड़ती और चिल्लाती है, तो वो हिस्ट्रिया से मुतासिर है। एक डॉक्टर थोड़ी सी गुले सोसन की अफ्यून लेगा और औरत के या मर्द के बाजू में या कहीं किसी नस में लगा देगा, और वो पुरसकून हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर जैसे ही अफ्यून का असर खत्म हो जाता है, तो उनका हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ उस हकीकी अफ्यून की मिसल है जो वादी के गुले सोसन से आती है, जिसे मैं जानता हूँ। वो वादी का गुले सोसन है। वो कलवरी पर कुचला गया, वो हमारी खताओं की खातिर घायल किया गया, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। इस वजह से वो फूलों में से कुचला जा रहा था। वो एक फूल था, वो एक अजीम तरीन फूल था जो कभी खिला। वो वादी का गुले सोसन था और वो अजीम शारून का गुलाब था। अब आज रात भी वो आसमान और जमीन के दरमियान लटका हुआ है। मैं ईमान रखता हूँ, जिस तरह वो उस वक्त भी दुनिया के गुनाहों को दूर करने के लिए और शिफा को दुनिया में वापस लाने के लिए लटका हुआ था, और बाइबल कहती है कि वो कल, आज और अब तक यकसा है। दोस्तों, जब खुदा ने मूसा को बियाबान में कहा, ये उसकी एक मिसल थी, एक पीतल के सांप को ऊपर लटकाना, और पीतल जाहिर करता है कि गुनाह का इंसाफ हो चुका है। सांप जाहिर करता है, बल्कि पीतल का सांप जाहिर करता है, गुनाह का इंसाफ पहले ही हो चुका है। पीतल इलाही अदालत है, जिस तरह के पीतल के मजबा पर जहां कुर्बानी रखी जाती थी, और जैसा कि एलिया ने भी ऊपर देखा और उसने कहा आसमान पीतल की तरह था। इलाही अदालत एक बेइत्काद कौम पर के वापस खुदा की तरफ फिरे। पीतल अदालत को जाहिर करता है, इलाही अदालत को, और सांप जाहिर करता है कि गुनाह का इंसाफ पहले ही हो चुका है, और यीशु वो पीतल का सांप था जो हमारे लिए गुनाह बन गया और खुदा का इंसाफ अपने ऊपर ले लिया। वो हमारी खताओं की खातिर घायल किया गया, हमारे गुनाह की खातिर कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उसे सजा दी गई, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। ओ, खुदा ने आज रात अपना अफ्यून का संदूक आपके लिए भर रखा है। मसीही दोस्तों, आप बीमार और दुखी हैं, ओ आप थके हैं, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते। आप इन जदीद दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं सरकश हो जाएंगे। क्या आज रात आपने लाइफ लाइन सुना कि उन्होंने क्या कहा? कि रूस ने 55 में कहा कि वो बिल्कुल पूरी दुनिया को मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे। इससे पहले ये हो, मसीह की आमदेसानी लाजम है। इसलिए दोस्तों, ये कितना नजदीक है, अब ये ठीक यहाँ बहुत करीब है। क्या आज रात आप पूरे दिल से उसकी तलाश नहीं करेंगे? वो वादी का गुले सोसन है, और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो आज रात यहाँ अपने लोगों के दरमियान खुद को ऊपर उठाए हुए है, ठीक जिस तरह मूसा ने गुनाह के निशान को इंसाफ के लिए उठाया था, और न के सिर्फ गुनाह के लिए बल्कि बीमारी के लिए भी। याद रखें, यीशु ने कहा, जैसे मूसा ने पीतल का सांप ऊंचे पर चढ़ाया, जरूर है वैसे ही इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मूसा ने ये किसके लिए ऊंचे पर चढ़ाया? गुनाह, बेइत्तकादी और बीमारी के लिए। इसी तरह यीशु को ऊंचे पर चढ़ाया गया गुनाह, बेइत्तकादी और बीमारी के लिए। वो वही कुछ था। अब आज रात हम इन दिनों में ये बड़ा तजाद पाते हैं, जबकि यीशु मसीह ने लूका में वादा किया कि इन दिनों में खुदावंद की आमद से पेशतर जैसे कि सदूम के दिनों में था, और वैसे ही जब इब्ने आदम अपने आप को जाहिर करेगा होगा, जिस तरह इब्ने आदम ने वहाँ अपने आप को इब्राहिम पर जाहिर किया था। एलोहिम, खुदा मुजस्सम होकर लोगों में आ गया और अब्राहम के साथ रहा और उसे दिखाया, उसे बताया कि सारा क्या सोच रही थी उसके पीछे बैठी हुई खेमा में। उसने उसे कभी नहीं देखा था, मगर बताया कि वो और उसका नाम लेकर बुलाया सारा। अब्राहम, क्या उसका नाम अब्राम ना था जब उसने उसके साथ चलना शुरू किया? लेकिन अब इब्राहम था, और ना ही सारी SARAI बल्कि SARAH सारा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? और उसने कहा, वो आपके पीछे खेमा में है, और कहा, मैं मौसम बहार के वक्त उससे मिलने आ रहा हूँ। और वो हंसी। उसने कहा, वो क्यों हंसी? अब यीशु ने कहा, पेशतर इस बड़े तजाद को इकट्ठा किया जाए और जला दिया जाए, इब्ने आदम अपने आप को जाहिर करेगा वैसे ही जैसे पहले किया था। और ये क्या है? ये आपके सामने असरे नौ उठाया जा रहा है। यीशु मसीह कल, आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? तो फिर आए अपने सरों को दुआ के लिए झुकाते हैं। प्यारे खुदा, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। तेरा कलाम हमारे लिए इतना इतना ज्यादा खुराक से भरा हुआ है खुदावन। हम सिर्फ इससे मोहब्बत करते हैं खुदावन, हम इसके वसीला जिंदा हैं। ऐसा लगता है कि हमारी काबिलियत कभी भी काफी नहीं थी। हम तो सिर्फ तेरी मेज पर बैठना पसंद करते हैं, तेरे कलाम के चौगिर्द बरकतों से शादमान होते हैं। खुदावन, जब हम भाइयों और बहनों की तरह इकट्ठे होते हैं जो खुदा के बेटे के लहू से खरीदे गए हैं, जो तेरे लहू से खरीदे गए हैं, और हम आज रात यहाँ आते हैं खुदावन, हमने ये रातें बीमारों के लिए दुआ करने के लिए मखसूस की हैं। और कलाम के मुताबिक तूने ये कहा है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। तो फिर दुआ करना इतना जरूरी नहीं जितना कि अपने गुनाहों का इकरार करना जरूरी है। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, फैले माजी है। ओ, क्या ही नजात का दिन है, क्या ही वादा इमैनुअल के वसीला से है जो यकीनन सच है। तूने कहा, थोड़ी देर बाद दुनिया मुझे फिर न देखेगी मगर तुम मुझे देखोगे, लेकिन मैं जाती इसम है, इस दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा, बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा, और जमाने के इख्तिताम पर इससे पहले कि ये बड़ा खात्मा हो, तूने कहा ये ऐसा ही होगा जैसे कि सदूम में आग नाजिल हुई और बुत प्रस्तों को जला दिया, और इब्ने आदम का मुकाशफा दोबारा आएगा जैसा कि सदूम में भी आया था। ऐ बाप, होने दे कि ये लोग इसे खोना दें, और मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदा, अगर कुछ अधूरी बात जो चल रही है या गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। खुदावन, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ये इसे खो ना दें। खुदावन, आज की रात को अजीम रात बना दे, ऐसा हो कि बीमार, दुखी और अंधे जो कोई भी यहाँ हैं, ऐ खुदावन, वो आज रात शिफा पाएं। होने दे कि हर एक गुनहगार बचाया जाए। अगर ये गैर ईमानदार हैं तो इनके दिलों को अब ठीक कर, ताकि ये इस वक्त मसीह को कबूल कर लें। ऐ बाप, ये अता फरमा, ये सब कुछ तेरे हाथों में है। हम अपने आप को तेरे सपुर्द करते हैं ताकि तुझे अपने दरमियान देखें। और तूने यूहन्ना 14:12 में कहा है, वो जो मुझ पर ईमान लाता है जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। हम कैसे जानते हैं कि तूने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया? क्योंकि तू वो नबी था जिसके बारे में मूसा ने कहा था कि वो उठ खड़ा होगा। उनके पास कई सौ सालों से नबी नहीं थे, तजाद हर तरफ था, तो भी खुदा का कलाम पूरा होना था, इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ और इसी तरह तजाद ने भी किया। और अब आप आज रात हम दोबारा इसे देखते हैं, तजाद एक बड़े गड्ढे की शक्ल में बंद रहा है, और हम देखते हैं कि कलाम भी इसी तरह से आ रहा है। बाप, आज रात हमें बरकत दे। हम अपने आप को तेरे कलाम के साथ तेरे हवाले करते हैं। जो भी तूने हमारी जरूरत के लिए करना है खुदावन, हमारे लिए कर, यीशु के नाम में आमीन। हम नहीं जानते खुदा ने क्या कहा, हो सकता है वो हमें कुछ बताना चाह रहा हो, इसलिए कुछ लम्हे के लिए यकीनन बाअदब हूँ। आमीन। क्या आपने कभी कलाम पढ़ा जहाँ पर दुश्मन आता है और वो सब एक जगह जमा थे और दुश्मन एक ऐसी बड़ी ताकत थी और खुदा का रूह एक आदमी पर उतरा और उसे बताया और उसने नबुवत की और कहा कि कहाँ पर जाकर इंतजार करना है और उन्होंने अपने दुश्मन को नेस्त कर दिया। यहाँ वो फिर से आता है, यही मकाम है जहाँ आपके दुश्मन को नेस्त किया जाए। देखें, खुदा का हाथ पकड़ लें, बेशक खुदा का हाथ मसीह जो कलाम है, इसलिए उसको आज रात अपने दिलों में लें जबकि हम दुआया कतार को बुलाते हैं। मैं यकीन करता हूं कि बिली ने दुआया कार्ड दोबारा दे दिए हैं। B20 आए, हम B85 को लेते हैं। कल रात हमने 15 लिए थे। हम अक्सर एक रात में 15 लेने की कोशिश करते हैं और अपने कार्ड पकड़े रहें। अब हम उन्हें बुलाएंगे, 15 के लिए कोशिश करेंगे। 85B, जिस तरह ब्रहनम, आप जानते हैं, B85 से 100 तक। और हम आए, देखें किसके पास 85B है। आप अपना हाथ उठाएं। यकीनन आप हैं। ओ ठीक है, पीछे है, 85 वाला ऊपर आए। अब मेरा बेटा, इसलिए शायद ये यहाँ कोई अजनबी हो जो ना जानता हो कि ये कैसे होता है। मेरा बेटा या कोई और यहाँ पर आता है, अगर वो ना आ सके तो फिर बाई बॉर्डर्स या कोई और, कोई एक आदमी आएगा और इन कार्ड्स को लेगा और लोगों के सामने खड़ा होकर इनको आपस में मिला देगा। इस तरह वो आपको एक कार्ड दे देता है। वो नहीं जानता कि आपको मजबा पर बुलाया जाएगा या नहीं, वो ये नहीं जानता और ना ही मैं जानता हूँ। मैं रात को आता हूँ और 10 या 15 कार्ड्स को कहीं से खींच लेता हूँ। इनके साथ आपकी शिफा का कोई ताल्लुक नहीं है, आप वहीं बैठे रह सकते हैं। देखें, कल रात कितने कल रात यहाँ थे, अपने हाथ दिखाएं। कैसे इन सारी इबादत में लोगों ने शिफा हासिल की थी। अब ये 85, 86, 87, 88, 89 और 90, हम इन्हें अभी लेते हैं। बी 85, 86, 87, 88, 89, 90, वो एक ही था। वाकई हमें जरूरत है, और अगर कोई यहाँ एक दूसरा है, हाँ वो इसे ठीक कर देगा। अब 90, 90 से लेकर 100 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अगर आप चल नहीं सकते, अगर आप, मैं एक जोड़े को देखता हूँ, अब यहाँ 3 व्हीलचेयर्स हैं, बल्कि 4, मेरा ईमान है कि मैं देख सकता हूँ। अगर आपने दुआया कार्ड हासिल किया है, जब आपका नंबर पुकारा जाता है और आप चल नहीं सकते तो सिर्फ अपना हाथ बुलंद करें, हम इसे चलाकर यहाँ ले आएंगे। और अगर आपने दुआया कार्ड हासिल नहीं किया तो वहीं बैठे रहें और दुआ करें और कहें, खुदावन यीशु आज रात मुझे शिफा होने दे। कितने यहाँ हैं जिनके पास दुआ या कार्ड नहीं है, अपने हाथों को बुलंद करें। हो मेरे खुदाया, ठीक है, आए, सिर्फ कहें। मैं उम्मीद करता हूँ ये आवाज़ बेअदबी का मर्तकब नहीं है, मगर एक मर्तबा वहाँ एक खातून थी जिसके पास दुआ या कार्ड नहीं था। हम कहेंगे वो भीड़ में जबरदस्ती घुस गई। उसने कहा, आप जरा गौर से सुने, अगर मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। कितने हैं जो इस वाक्य को जानते हैं? ठीक है, और औरत ने क्या किया? उसने उसको छुआ और चली गई और बैठ गई। और यीशु मुड़ा, वो जानता था वो कहाँ है। क्या ये दुरुस्त है? वो जानता था तो उसको क्या रोग था? क्या ये ठीक है? वो जानता था उसको क्या परेशानी थी, इसलिए उसने उसे बताया कि उसकी क्या परेशानी थी। और उसने अपने बदन में महसूस किया कि खून बहना रुक गया है। क्या ये ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने उसको छुआ था। अब आज रात कितने मसीही जानते हैं कि अब्रानियों के मुताबिक, अब्रानियों की किताब के मुताबिक, यीशु अब हमारा एक सरदार काहिन है। क्या हम सरदार काहिन को अपनी कमजोरी के एहसास में छू सकते हैं? क्या वो है? ठीक है, अगर वो वही सरदार काहिन है तो वही खिदमत है। वो सरदार काहिन है तो फिर वो कैसे काम करेगा? वो वही काम करेगा जो उसने पहले किए थे। क्या आप ईमान रखते हैं? वो वही काम करेगा जो उसने पहले किए थे। अगर आप ये ईमान रखते हैं तो फिर ठीक है। कितने ईमान रखते हैं? आप अपने हाथ बुलंद करें और कहें, मैं यकीनन ईमान रखता हूँ। ठीक है, इससे पहले ये दुआया कतार बनाएं, आए एक दुआया कतार वहाँ बनाएं। मैं जानता हूँ वो यहाँ है। मैं उसकी हजूरी महसूस करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ है। आए, क्या दुआया कतार तैयार है? मैं वहाँ से बुलाना चाह रहा था। आप सिर्फ दुआ करें, सिर्फ इस तरफ देखें और दुआ करें, सिर्फ ईमान रखें। एक छोटी खातून यहाँ बैठी हुई है और सीधी मेरी तरफ देख रही है। उसे अगली चश्मा पहने हुई है। क्या आप नहीं देख सकते कि वो वहाँ उस खातून पर जुम्बश कर रहा है? यहाँ देखें, देखें, वो दिल की बीमारी से दुख उठा रही है। क्या आप ईमान रखती हैं? खुदा आपको शिफा देगा। अगर रखती हैं तो अपना हाथ बुलंद करें। क्या यही आपकी परेशानी थी? ये सच है। अब अगर आपकी यही परेशानी थी तो अपना हाथ उठाएं ताकि लोग आपको देख सकें। आप इस तरह हाथ उठाएं। अब आपके अंदर ये नहीं है। आपके ईमान ने आपको अच्छा कर दिया है। वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। ओ, यहाँ तजाद है, मगर यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। क्या अब आप सिर्फ दुआ करते रहें, देखें, ताकि आप जान सकें कि आपको यहाँ ऊपर नहीं होना है। अब ये एक खातून है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने इसे कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये सिर्फ एक खातून है जो यहाँ खड़ी है, और आपके पास दुआया कार्ड है, और आप नहीं जानती थी कि आपको बुलाया जाएगा या नहीं। किसी ने आपको दुआया कार्ड दिया और आपका नंबर पुकारा गया, इसलिए आप यहाँ आई हैं। क्या ये दुरुस्त है? और मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि जानूं कि आप कहाँ से हैं और आप कौन हैं। आप कहाँ से आई हैं, आप क्या चाहती हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, आप एक औरत हैं। ये ठीक है। इस तरह की एक तस्वीर हमें बाइबल में मिलती है, मुकद्दस यूहन्ना 4 बाप में। अब आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, फिर आपने क्या किया कुछ देर पहले? देखें, ये सिर्फ छोटे से खिंचाव में आ गया। देखें, मैं नहीं जानता उसे ऐसे करना है, मगर मैं नहीं जानता वो खातून वहाँ कैसी थी। मैंने इस खातून को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो मेरे लिए बिल्कुल एक अजनबी है। मैं यकीन करता हूँ कि वो यही एक खातून थी। वो कौन सा शख्स था जो अभी सामीन में से शिफा याब हुआ था? क्या आप? जी हाँ, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अगर ये दुरुस्त है तो अपना हाथ बुलंद करें। देखें, मैंने इस खातून को कभी नहीं देखा, मगर वो यहाँ बैठी यकीन कर रही थी। अब इसने किसी चीज को छुआ, क्या उसने नहीं छुआ? मुझे छूने से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या अब आप नहीं देख सकते कि बाइबल खुदा का कलाम है? वो कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है। हम रूह कुछ के मस्कन बन जाते हैं जो कि मसीह है। देखें, यही हकीकी बीज है। तब हकीकी रूह कुछ हकीकी कलाम के बीज में आ जाता है। ना, ये सिर्फ उसका कोई हिस्सा नहीं लेगा, मगर इबलीस ऐसा करता है। लेकिन आपको सारे का सारा कलाम लेना है। देखें, उसका हर लफ्ज, क्योंकि वो आधा खुदा नहीं है, वो पूरा खुदा है। देखें, और यही होता है। अब यहाँ एक खातून है, मैंने इसको कभी नहीं देखा। एक बार यीशु भी इस तरह की खातून को मिला था। हो सकता है ऐसी हालत ना हो, मैं नहीं जानता। और वो कुएं पर बैठा हुआ था, उसको सामरिया में जाना था, और हम जानते हैं कि सामरिया पहाड़ के नीचे है, और बल्कि वो यरहू जा रहा था, और उसको सामरिया से होकर जाना था, और वो सोखार के इलाके में आया, और वो कुएं पर बैठ गया और अपने शागिर्दों को खाना लेने भेजा। कितनी इकसाम की नस्लें दुनिया के अंदर मौजूद हैं? 3, हाम, सिम और याफ्त के लोग। हम सब नू से आए हैं, और उस जमाने की सारी दुनिया तबाह हो गई थी। लोगों की 3 नस्लें, हकीकी यहूदी, गैर अकवाम और सामरी, जो के आधे यहूदी और आधे गैर कौम थे, और यही नस्लें पूरी दुनिया में हैं। 3, देखें, खुदा में हर चीज 3 में कामल होती है। जिस तरह ये 3 जिनकी मैं आज रात बात कर रहा था, तजाद के 3 मकाम, कलाम मुजस्सम होने के 3 मकाम और वगैरह वगैरह। देखें, अब उसने यहूदियों से बात की और फिलिप्पस को बताया। जब वो नतनएल को लाया तो वो कहाँ था? और कहा, मैंने उसे देखा जब वो दरख्त के नीचे था। उसे बताया, जब इंद्रियास पतरस को लाया, उसने कहा, तेरा नाम शमाउन है और अब से तू पतरस पुकारा जाएगा, और कहा, तू यूना का बेटा है। देखें, अब ये सब यहूदी थे, मगर यहाँ वो गैर कौम के पास आता है। गैर कौम के पास नहीं, बल्कि एक सामरी के पास। अब गैर कौम का वक्त है। उसने कभी भी ये गैर अकवाम में नहीं किया था। कलाम में तलाश करें, कभी नहीं। मगर उसने लूका 22 में ये वादा किया कि अपनी आमद से पहले ये करेगा, लेकिन वो वहाँ बैठ गया और वहाँ एक आधी यहूदी और आधी गैर कौम एक खातून आई और उसने औरत से कहा, खातून मुझे पानी पिला। औरत ने कहा, क्यों, आपको तो ये नहीं मांगना चाहिए, हम तो अलहदा किए गए लोग हैं, आप यहूदी हैं और मैं एक सामरी हूँ। उसने कहा, लेकिन अगर तू जानती जो तुझसे बातें कर रहा है वो कौन है, तो फिर तू मुझसे पानी मांगती। वो क्या कर रहा था? उसकी रूह से रابطہ कर रहा था। और जैसे ही उसने उसकी परेशानी को मालूम कर लिया कि वो क्या थी, तो ठीक, उसने उससे कहा, अपने शौहर को बुला ला। उसने कहा, मैं बेशौहर हूँ। उसने कहा, ये ठीक है, मगर तू पांच कर चुकी है। अब देखें, जब फरीसियों ने उसको ये करते देखा, ठीक है, वो तजाद ठीक कलाम के माबैन है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, ये आदमी बालजबुल है, एक नजूमी है। देखें, और यीशु ने कहा, जब रूहुल कुस आएगा और इस तरह के काम करेगा, तो जो कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा तो उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। यही आपका तजाद है। देखें, लेकिन उसने कहा, वो उन्हें माफ कर देगा, क्योंकि तब तक रूहुल कुस नहीं आया था, कुर्बानी का बरा जबा नहीं हुआ था। मगर तब उस औरत ने ऐसा नहीं सोचा था। औरत ने कहा, जनाब, आप मुझे एक नबी लगते हैं। कई सौ सालों से उनके पास कोई नबी ना था। कहा, मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं। अब हम जानते हैं मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो वो यही करेगा। ठीक, उसने यही किया, तो फिर वो कल आज यकसा है, जैसा उसने अपने आप को उस वक्त जाहिर किया। क्या वैसा ही वो आज नहीं है? वैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ एक खातून और फिर एक आदमी मिलता है। ये औरत वो नहीं, ना ही वो आदमी मैं हूँ, लेकिन वो रूल कुछ यहाँ है। और उसने वादा किया, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिनों में जैसे काम उसने किए, हम भी वैसे ही काम करेंगे। अब मैं आपको नहीं जानता, और आप जानती हैं कि ये सच है। हम बिल्कुल अजनबी हैं और आप यहाँ खड़ी हैं। कुछ भी ये हो सकता है, आपके साथ कोई मसला हो, नहीं भी हो सकता, मैं नहीं जानता। अगर खुदावंद यीशु आपकी परेशानी मुझ पर जाहिर कर दे अपने रूल कुछ के जरिया, तो फिर आप ईमान लाएंगे कि ये इब्ने आदम ही है, कोई और इंसान नहीं। ये तो एक पतवार है, ये एक खेमा है जिसको खुदा इस्तेमाल करता है, वो कोई भी हो जिसको वो चुन लेता है। वो ये अपने खुद मुख्तार फजल और चुनाव से करता है। इसलिए आप सिर्फ ईमान रखें। आप रखेंगी? सामीन में से कितने इस पर ईमान रखते हैं? हम दोनों यहाँ रोशनी के सामने खड़े हैं कि हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिले, कोई ख्याल नहीं कि वो औरत कौन है, वो क्या है, वो कहाँ से आई है, वो क्या चाहती है। मैंने इसको अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज इसे यहाँ बैठे हुए देखा है। लेकिन देखें, मैं यहाँ आपके लिए क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उस ताजाद को आपसे दूर करूँ और कलाम पर ईमान रखें। जब वो हमारे दरमियान मुजस्सम होता है, कलाम हमारे बदनों में जिंदा हो जाता है, ये खुदा की हजूरी को लाता है। अब वो इसको ये अता करे, वो इस लायक है जो वो मांग रही है। वो बे औलाद है, वो एक बच्चा चाहती है। वो तकरीबन 40 साल की है, ये यकीनन नामुमकिन नहीं है। अब यहाँ वो औरतें बैठी हुई हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में बांझ थी और इसी तरह प्लेटफॉर्म पर आईं और खुदावर ने उनको साहिबे औलाद कर दिया। जो जानते हैं उनमें से कुछ अपने हाथ उठाएं। देखें, मैंने एक प्यारी छोटी बच्ची को किसी दिन इतवार को जाने से पहले उठाया था। इतवार की दोपहर को खुदावन ने मुझे बताया था कि उसकी माँ बांझ थी और वो छोटी लड़की सबसे प्यारी सी। क्या वो यहाँ है? वो कहाँ है? जी हाँ, वो यहाँ है, ठीक यहाँ नीचे बैठी हुई है। माँ भी यहाँ बैठी हुई है, वो छोटी लड़की खुद यहाँ बैठी हुई है। क्या उसको देखा? वो खुदा के फरमूदा कलाम से हुई थी। अब क्या आप उस पर पूरे दिल से ईमान रखेंगी? क्या आप उस बरकत पर ईमान रखती हैं जो आपके पास है? ये आप अपने अंदर अब महसूस करती हैं कि खुदा जवाब दे रहा है। अगर खुदा मुझे बता दे कि आपका नाम क्या है, ताकि आप अपने बच्चे का नाम रख सकें, क्या आप ईमान रखेंगी? अगर आप पूरे दिल से ईमान रखेंगी, तो फिर मिसिज थॉमसन, आप घर जा सकती हैं और अपना बच्चा पाएं। क्या आप पूरे दिल से ईमान रखती हैं? सिर्फ ईमान रखें, शक न करें, सिर्फ खुदा पर ईमान रखें। खुदा खुदा है। जनाब, आप कैसे हैं? मेरा ख्याल है कि हम भी अजनबी हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में आपको तब देखा जब आप यहाँ आ रहे थे, और मेरा ख्याल है कि आप बाइश केरियन के अंकल या वो मिशिगन भाई मिशिगन गाने वाले के पास से आ रहे थे, तब मैंने आपको दुआया कतार में जाते हुए देखा था। अब आपके साथ अजनबी होने के नाते और या आप और मैं हर तरह से अजनबी हैं। अब अगर खुदावन यीशु मुझे बता दे कि आपको क्या है या शायद आप क्या चाहते हैं, चलें ये कहते हैं आपको बता दे जो मुझे बताया है कि आप क्या चाहते हैं। अब वो ये आपको पहले ही दे चुका है, सिर्फ इतनी ही बात काफी है कि आप उस पर ईमान रखें। अब कितने ये समझते हैं, फक्त इतना ही काफी है कि ईमान रखें, जो कुछ आपने मांगा है वो मिल चुका है। देखें, अब अगर आप यहाँ कुछ चाह रहे हैं और वो मुझे बता सकता है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप जानते हैं कि मैं नहीं जानता कि आपकी ख्वाहिश क्या है, तो यहाँ कुछ होना चाहिए जो ये कर रहा है। अब कलाम के मुताबिक उसने ये करने का वादा किया है, वो उनके दिल के अंदर के ख्यालों को भी जानता था। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल सच है। आपके अंदर शिफा पाने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। एक बात, आप असाबी कमजोरी की वजह से दुख उठा रहे हैं, हकीकी बेचैनी है, ये ठीक बात है। दूसरी बात, आपकी कमर में तकलीफ है और कुछ अरसा कमर की हालत बहुत बुरी थी और आपने इसका ऑपरेशन भी करवाया था। ये खुदावन यूं फरमाता है, ये सच है। देखें, ये ठीक है। और यहाँ एक दूसरी बात ये कि आपके दिल की गहराई से आप चाहते हैं कि आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल करें, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ आ जाएं, प्यारे खुदा, यीशु मसीह के नाम में ये शख्स रूहुल कुद्स से भर जाए, बेशतर इसके कि ये इस जगह को छोड़े, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे भाई, अब इसे हासिल करें, फक्त ईमान रखें और शक न करें। आप कैसी हैं? मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। अगर ये ठीक बात है तो लोग जान सकें और वो देख सकें कि हम अजनबी हैं, इसलिए अपना हाथ उठाएं। मैंने दीदा दानिश्ता इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा और मेरा ख्याल है कि इसने भी मुझे कभी नहीं देखा जब तक ये सामीन में से बाहर नहीं आई, क्योंकि आसमानी बाप जानता है और उसका कलाम यहाँ रखा हुआ है। दीदा दानिश्ता, मैंने इस औरत को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं जानता कि आप यहाँ किस लिए आई हैं, और कोई अंदाजा नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं आपको एक बात भी नहीं बता सकता, सिर्फ एक बात, ये सिर्फ एक नेमत है। अगर मैं कर सकता, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे बयान करते सुना, थोड़ा चलकर आएं, वो क्या कहता है सुने, जो मैं देखता हूँ मैं वही कह सकता हूँ जो वो नहीं कहता। मैं नहीं कह सकता, अगर मैं अपने आप से कहूँगा तो ये गलत होगा। देखें, ये गलत ही होना है। अगर वो कहेगा तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये कभी गलत नहीं होगा जब तक खुदा है, समझे। देखें, क्योंकि खुदा कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर खुदा मुझे बता दे कि आप क्या चाहती हैं, आपकी तमन्ना क्या है, आप यहाँ किस लिए आई हैं, आप कुछ कर चुकी हैं या कुछ भी इस तरह का, आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, या जो कुछ भी वो मुझे बताना चाहता है, क्या आप ईमान रखेंगी? शुक्रिया। एक बात, आपके पाँव में तकलीफ है, आपके दोनों पाँव में तकलीफ है, ये सच है, तो अपने हाथों को बुलंद करें। आपको जनाना तकलीफ है, खवातीन की बीमारी, और आपके दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि आपने किसी को खो दिया है, वो एक लड़का है और आपका लड़का घर छोड़कर भाग गया है, और आप चाहती हैं कि मैं दुआ करूं ताकि वो वापस आ जाए। आसमानी खुदा, इसका बच्चा इसको लौटा दे और शिफा दे दे। रूहुल कुद्स उस नौजवान को आज रात रोड पर रोक दे, उसको वापस उसकी माँ के पास भेज दे, यीशु के नाम में, आमीन। फिक्र मत करें, वो जो जानता है आपके पास उसे वापिस भेजेगा। फक्त एतकाद रखें, अब शक मत करें, फक्त अपने पूरे दिल से आप ईमान रखें, आप एतकाद रखें और बाकी सब कुछ खुदा करेगा। अब फक्त इन तीन या चार को परखना, ये जो कुछ भी था, देखें, मैं चलता ही गया जब तक कि उसने मुझे अंधा ना कर दिया। मैं ये बयान नहीं कर सकता, इसको बयान करने का कोई तरीका नहीं है। आप कहते हैं आपका मतलब है फक्त ये उससे भी बदहाल है जो आपने 45 मिनट बाहर मस्जिद मना दी की, आप सोचते हैं? जी हाँ, अगर ये तीन घंटों तक भी होता है तो ये ना काफी होगा। एक औरत ने हमारे खुदावन यीशु की पोशाक को छुआ था और ये लोग मुझे नहीं छू रहे हैं। ये औरत जो यहाँ है, जरा इधर देखें, वो कर सकती है। औरत ने मुझे पूरी तरह से छुआ है मगर कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, लेकिन उसने उसको छुआ है और मुझ में एक नेमत के वसीला से फक्त काम करता है। मैं पूरे तौर पर हट जाता हूँ, मैं सिर्फ वही कहता हूँ जो देखता हूँ। देखें और यही सब कुछ है। देखें, मुझे छूने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो मेरे जरिए यस्सू को छूती है। उसी तरह उस औरत ने खुदा को यस्सू के वसीले छुआ। तब वो नहीं जानता था कि औरत के साथ क्या मसला है। औरत ने सिर्फ उसकी पोशाक छुई और जाकर बैठ गई। और उसने कहा, किसने मुझे छुआ है? और रसूलों ने कहा, क्यों, हर एक आपको छू रहा है, आपने ये क्यों कहा? उसने कहा, मगर मुझे महसूस होता है कि नेकी मुझ में से निकली है। अब आप जानते हैं कि नेकी क्या है? कुव्वत। वो एक औरत के छूने से कमजोर हुआ और वो इब्ने खुदा था। मेरे बारे में क्या ख्याल है? एक गुनहगार, उसके फजल से बचाया हुआ। आप जानते हैं ये क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसने कहा था, ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, बल्कि तुम इससे भी बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। बड़े, उसने यहाँ ये कहा, मगर इसका यूनानी में मतलब है तुम इससे ज्यादा काम करोगे। अब इस खातून को मैं नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है, जैसे कि दूसरे लोग थे। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। सिर्फ इसलिए अपना हाथ उठाएं ताकि लोग जान सके, कहें हम अजनबी हैं। अब खुदा का बेटा, जब वो एक मर्तबा एक औरत से इस तरह के मंजर में कुएं पर मिला और उसने कुछ लम्हे उससे बात की और वो जान गया कि उसका मसला क्या था और उसने बताया कि उसकी क्या परेशानी थी और इसलिए वो जान गई कि वो मसीहा था। अब ये कि मेरे पास आप मुझे छू चुकी हैं, मैं आपको छू चुका हूँ मगर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरा ईमान नेमत के जरिए और आपका ईमान उस पर ईमान रखने से उसको छू सकता है, तो वो हमसे बोल सकता है, मेरे वसीला आपसे, तब आप जानेंगी कि वो यहाँ है, जिस तरह के वो सुखार के कुएं पर था। देखें, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या आप ईमान रखती हैं? आपकी बहुत ज्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें और पाचीदगियां हैं। उनमें से एक खास बात जिसके लिए आप दुआ करवाना चाहती हैं, वो जोड़ों का दर्द है। ये ठीक बात है, क्या ये ठीक है? आप जोड़ों के दर्द के बायस अकड़ती जा रही हैं। जब आप देखती हैं तो अपना हाथ बुलंद करें और मेरी याददाश्त के मुताबिक आप आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। थोड़ी देर, एक मिनट के लिए रुकें। हो सकता है कि कुछ और कहा जाए और वो ले लेना, या आप जानती हैं और आप ऐसी चीजें महसूस करती हैं। आप लोग जानते हैं किस तरह उसके खिलाफ बात की जा रही है। वो कहते हैं, क्यों, वो तो सिर्फ अंदाजा लगाता है, या आप जानते हैं इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप मुझे बेहतर शख्स लगते हैं, एक लम्हा के लिए मुझसे बात करें। हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ खड़े होते हैं क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपके दिल में कुछ और है जो आप खुदा से चाहते हैं। अब मैं आपकी दुआ का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन वो दे सकता है, क्योंकि अगर आप इसका यकीन करें तो इसका जवाब पहले ही मिल चुका है। लेकिन अगर आप सिर्फ ईमान रखना चाहते हैं तो आप ईमान रखें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी प्यारे के लिए है जो यहाँ नहीं है, और वो भाई है, और वो भाई इस मुल्क में नहीं है, वो एक नमी वाले देश में है जहाँ बहुत सारी झीले हैं। मैं कहना चाहूँगा जैसे मिशिगन में, हाँ मिशिगन में, जहाँ पर वो है, और वो जानलेवा बीमारी से दुख उठा रहा है और वो गुर्दे की बीमारी से परेशान है जिसका इलाज नहीं हो सकता। ये ठीक है, क्या ये नहीं? ये खुदावंद यूँ फरमाता है। अब जो रुमाल आपने अपने हाथ में रखा है वो खुदा के सामने उठाएं, अपने भाई को भेज दें और उसे बताएं शक ना करे बल्कि ईमान रखे, और वो ठीक हो जाएगा, वो शिफा पा जाएगा। अब बशर्ते कि आप इसका यकीन करें। क्या आप पूरे दिल से ईमान रखते हैं? और फिर देखें, अगर आप ईमान रखते हैं तो सिर्फ एक ही काम आपको करना है, उसे मुकम्मल तौर पर कबूल करें। क्या ये सच है? अब आप कहते हैं वो ये और उन लोगों को देख रहा है, वो उन्हें देख रहा है और वो यही कर रहा है। आप ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं, ये खातून यहाँ हैं, यहाँ ये मरीज खातून इस तरफ से ऊपर आई हैं। आप जो कोई भी हैं, मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा। क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपकी परेशानी मुझ पर जाहिर कर सकता है? अगर आप रखती हैं तो आप अपने हाथ उठाएं। ये खातून यहाँ है, खातून यहाँ है, ये मरीज है। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तब अगर आप अपने पूरे दिल से ईमान रखेंगी तो दमे की बीमारी आपको मजीद तकलीफ ना देगी। ये सच है, ईमान रखें और घर जाएं। इसको मत देखें, ये क्या था? देखें, वो आप इस तरीके से देखें, रोया यहाँ है, कोई मसला नहीं, क्या वकू में होता है। आमीन, क्या आप ये नहीं देख सकते? बिल्कुल कामिल, जैसा कि खुदा कामिल है। क्या आप भी ईमान रखते हैं? दमा आपको भी इस तरह छोड़ सकता है, क्या ये नहीं छोड़ सकता? आप ईमान रखें, ये छोड़ देगा। ठीक है, आप जाएं और खुदावंद यीशु को बताएं कि आप उस पर ईमान रखते हैं। किसी दिन आपको एक छोटी लाठी लेनी पड़ेगी अगर जोड़ों के दर्द ने आपको माजूर कर दिया। मगर आप माजूर होने नहीं जा रहे, आप इसका यकीन नहीं करते? क्या आप यकीन करते हैं? आप यकीन करते हैं कि आप तंदुरुस्त होने जा रहे हैं? तो जाएं, अपना रास्ता लें, यीशु मसीह आपको तंदुरुस्त करता है। दिल का दौरा लोगों को हलाक कर रहा है, लेकिन ये आपको हलाक नहीं कर पाएगा। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा इसको आपके लिए तंदुरुस्त कर देगा और आप ठीक हो जाएंगे? अपने पूरे दिल से ईमान रखते हुए जाएं, कहें मैं वाकया ही इसके लिए ईमान रखता हूँ। क्या आप अंग्रेजी बोल सकती हैं और आप अंग्रेजी समझ सकती हैं? कोई शख्स आए? जी हाँ, ये ठीक है। क्या आप मेरा तर्जमा इस खातून के लिए करेंगे? इसको बताएं, अगर ये ईमान रखेगी तो इसके मैदे की बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या ये ईमान लाती है? आपकी कमर की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा अब आप शिफा याब होते हुए अपनी राह पर जा सकती हैं। आप कैसी हैं? क्या आप ईमान रखती हैं? वो आदमी कमर की तकलीफ के साथ बैठा हुआ है। जब मैंने ये कहा तो वो मेरी तरफ देख रहा है। वो अभी ठीक हो सकता है जनाब, अगर आप इसका यकीन करें तो। ठीक है जनाब, आपकी अगली तरफ ठीक एक खातून बैठी हुई है। आपको गले की तकलीफ है खातून, क्या आपको है? आप ईमान रखें, खुदा आपको शिफा देगा। आप चाहती हैं कि उस छोटे लड़के के घुटनों पर हाथ रखा जाए तो वो भी तंदुरुस्त हो जाएगा। क्या आप ये ईमान रखती हैं? आपको सनाना बीमारी थी, औरतों वाली बीमारी, ये आपको अब नहीं है। आपके ईमान ने आपको शिफा दे दी है और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी हैं। क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है? आए अपने हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए दुआ करें, ईमान से दुआ करें। हम में से हर एक ईमान से दुआ करें। प्यारे खुदा, जबकि हम तेरी इलाही हजूरी से बहुत ज्यादा डांपे हुए हैं और तुझे सामीन के दौरान काम करते हुए देख रहे हैं, बीमार हर तरफ शिफा पा रहे हैं, तू खुदा है। मैं पूरी जमायत के लिए दुआ करता हूँ कि तू इन्हें शिफा दे। खुदा अपने दम से इनके दिलों को ताज़ा दम होने दे और ये जान जाएं कि वक्त गुजर रहा है। हम थोड़ी ही देर के लिए यहाँ हैं, फिर हम उसके साथ होंगे जिससे हम प्यार करते हैं। और अब होने दे कि तेरी हजूरी हर एक के लिए शिफा लाए। हम शैतान को रद्द करते हैं, हम उसके सारे कामों को भी रद्द करते हैं। शैतान, यीशु मसीह के नाम से लोगों में से बाहर निकला। अब वो सब जो उस पर ईमान रखेंगे और अपनी शिफा को कबूल करेंगे, आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, कहें अब मैं अपनी शिफा हासिल करने के लिए खड़ा होता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ इससे कतई नजर कि आपकी हालत कैसी है। अगर आप वाकई ही ईमान रखते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को भी उठाएं और कहें, खुदावन यीशु, मुझे शिफा देने के लिए शुक्रिया, खुदा आपके साथ हो।